एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार। एकत्र ज्ञान गोष्ठी के इस अंक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी पहली मेजबान।
और मैं हूं आपका दूसरा मेजबान।
आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने जा रहे हैं जो विज्ञान, इतिहास और हमारी आज की दुनिया सबकी सुरक्षा से जुड़ी है।
बिल्कुल, किताब है मार्क वॉलवर्टन की न्यूक्लियर वेपन्स, हिस्ट्री, पैराडॉक्स एंड ग्लोबल सिक्योरिटी, परमाणु हथियार।
ये शब्द सुनते ही ना दिमाग में बहुत कुछ आता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कोल्ड वॉर।
हाँ, और आज भी जो दुनिया भर में तनाव है।
सही कहा, तो ये विषय आज भी उतना ही जरूरी है, शायद पहले से भी ज्यादा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इन हथियारों ने सिर्फ लड़ाई का तरीका ही नहीं बदला, इन्होंने देशों के आपसी रिश्ते, हमारी पॉलिटिक्स, यहाँ तक कि हम इंसान अपने भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं उसे भी एकदम जड़ से बदल दिया है। वुलवर्टन इसी की पड़ताल करते हैं, खासकर जिसे वो कहते हैं परमाणु विरोधाभास।
विरोधाभास, पैराडॉक्स, ये सुनने में इंटरेस्टिंग है। क्या मतलब है इसका?
मतलब ये कि एक तरफ तो ये हथियार इतनी भयानक तबाही ला सकते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग मानते हैं कि इन्हीं हथियारों के डर ने, जिसे निवारण या डेटरेंस कहते हैं, बड़े देशों के बीच सीधी जंग को रोका भी है।
अच्छा, तो ये एक अजीब सी कश्मकश है।
हाँ बिल्कुल, महाविनाश का औजार भी और शायद शांति बनाए रखने का एक अजीब सा साधन भी। इसी उलझन को, इसी कॉम्प्लेक्सिटी को समझना आज की दुनिया के लिए बहुत बहुत जरूरी है।
तो चलिए इस उलझन को सुलझाने वाले लेखक मार्क वॉलवर्टन, इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। कौन हैं ये और इनकी बात में ऐसा क्या खास है?
मार्क वॉलवर्टन एक जाने माने साइंस राइटर और हिस्टोरियन हैं, और उनकी खासियत ये है कि वो विज्ञान और तकनीक के मुश्किल टॉपिक्स को, खासकर ये न्यूक्लियर टेक और समाज पर उसका असर को, बड़ी ही सरल और दिलचस्प अंदाज में समझाते हैं। वो सिर्फ फैक्ट्स नहीं बताते, कहानी सुनाते हैं।
अच्छा, मतलब वो सिर्फ साइंटिस्ट या हिस्टोरियन नहीं है?
नहीं, उससे कहीं ज्यादा, वो एक तरह से जानकारी को जोड़ने वाले माहिर हैं। उन्होंने साइंटिस्ट्स, पॉलिसी मेकर्स, मिलिट्री वालों सबसे बात करके अपनी समझ को बहुत गहरा किया है। इसीलिए वो सिर्फ तकनीक की बारीकियां ही नहीं बताते, बल्कि परमाणु हथियारों से जुड़े जो सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक सवाल हैं उनको भी सामने लाते हैं। उनका ये जो मल्टीडिसिप्लिनरी नजरिया है ना, वो इस किताब को बहुत खास बनाता है। वो हमें पूरी पिक्चर दिखाते हैं, सिर्फ एक टुकड़ा नहीं।
समझ गई, तो अब आते हैं किताब पर। वॉलवर्टन इस किताब के जरिए क्या बताना चाह रहे हैं? क्या मकसद है इसका?
देखिए, किताब का सीधा सा मकसद है परमाणु हथियारों की पूरी कहानी बताना।
बिल्कुल
शुरुआत से लेके आज तक।
हाँ,
वो चाहते हैं कि भाई चाहे पॉलिसी बनाने वाले हों, स्टूडेंट्स हों, आर्मी वाले हों या हम जैसे आम लोग,
हाँ,
सब इस टेक्नोलॉजी की ताकत, इसके खतरों और इसकी जो पेचीदगियां हैं उन्हें समझें।
ये सिर्फ इतिहास नहीं है,
नहीं,
ये आज की दुनिया में इन हथियारों की जगह और उनके फ्यूचर पर एक गहरी नजर है।
तो ये किताब हमें कहां से कहां तक ले जाती है, इसकी यात्रा कैसी है?
यात्रा शुरू होती है 20वीं सदी की शुरुआत की साइंटिफिक खोजों से।
अच्छा।
कैसे साइंटिस्ट ने एटम के अंदर छिपी एनर्जी का पता लगाया।
अच्छा।
फिर आता है वर्ल्ड वॉर टू और मैनहट्टन प्रोजेक्ट, जिसने पहला एटम बॉम्ब बनाया। उसके बाद हिरोशिमा और नागासाकी पर बमबारी, जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया।
और फिर वो कोल्ड वॉर वाला दौर। हाँ, फिर आता है कोल्ड वॉर का लंबा दौर, जब अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच हथियारों की एक भयानक रेस चली, कैसे एक के बाद एक और ज्यादा खतरनाक हथियार बने। और फिर कोल्ड वॉर के बाद का टाइम, जब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दूसरे देशों में फैली, जिसे प्रोलिफरेशन कहते हैं,
परमाणु प्रसार।
हाँ, परमाणु प्रसार। और आज की नई चुनौतियां, जैसे न्यूक्लियर टेररिज्म का डर, नई टेक्नोलॉजीज, वॉलवर्टन इन सब पर बात करते हैं। साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, स्ट्रेटजी, एथिक्स, सब कुछ इसमें शामिल है।
सुनने में तो ये वाकई एक बहुत बड़ी और उलझी हुई कहानी लगती है।
हाँ।
चलिए इसे थोड़ा और खोलते हैं। शुरुआत कहाँ से होती है? विज्ञान से?
बिल्कुल, पहला हिस्सा है विनाश का भौतिकी, यानी फिजिक्स ऑफ डिस्ट्रक्शन। यहाँ वॉलवर्टन हमें एटम के अंदर ले जाते हैं। वो समझाते हैं कि न्यूक्लियर फिजन, यानी एक भारी एटम का टूटना, और न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी हल्के एटम्स का जुड़ना, कैसे इतनी जबरदस्त एनर्जी पैदा करते हैं।
आइंस्टाइन का E=mc² वाला फॉर्मूला।
हाँ वही, जिसने बताया कि मैटर को एनर्जी में बदला जा सकता है। और फिर एनरिको फर्मी और लियो ज़िलार्ड जैसे साइंटिस्ट का काम, जिन्होंने इसे प्रैक्टिकल बनाया।
ये सोचना ही कितना अजीब है कि जो शुरू में सिर्फ एक साइंटिफिक क्यूरियोसिटी थी,
हाँ,
वो आगे चलकर इतने भयानक हथियार की वजह बन गई।
बिल्कुल, और यहीं से कहानी मैनहट्टन प्रोजेक्ट की तरफ मुड़ती है। परमाणु युग का जन्म। ये वर्ल्ड वॉर टू के टाइम अमेरिका का सीक्रेट प्रोजेक्ट था एटम बम बनाने के लिए। वॉल्वर्टन बताते हैं कि ये कितना बड़ा, कितना गोपनीय प्रोजेक्ट था।
और इसके पीछे डर भी था, है ना?
हाँ, एक बड़ा डर था कि कहीं नाजी जर्मनी पहले बॉम्ब ना बना ले।
इस प्रोजेक्ट से जुड़े कुछ बड़े नाम भी होंगे जरूर।
हाँ बिल्कुल, साइंटिफिक हेड थे जे. रॉबर्ट ओपेनहाइमर, एक बेहद टैलेंटेड लेकिन कॉम्प्लेक्स इंसान, और मिलिट्री इंचार्ज थे जनरल लेस्ली ग्रोव्स। किताब में इन लोगों के बीच के रिलेशन और टेंशन का भी जिक्र है।
और वो वैज्ञानिक जिन्होंने इसे बनाया, उनके मन में क्या चल रहा होगा?
वॉल्वर्टन उनकी नैतिक दुविधाओं को भी दिखाते हैं। वो जानते थे कि वो क्या बना रहे हैं। ओपेनहाइमर ने बाद में भगवद्गीता को कोट करते हुए कहा भी था, नाउ आई एम बिकम डेथ, द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स।
रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुनकर। और फिर वो दिन आया जब इन हथियारों का इस्तेमाल हुआ, हिरोशिमा और नागासाकी।
हाँ, अगला हिस्सा इसी पर है, न्यूक्लियर डेब्यू। वॉल्वर्टन जापान पर बम गिराने के फैसले का एनालिसिस करते हैं। मिलिट्री जरूरतें थीं, राजनीतिक कारण थे, शायद सोवियत यूनियन को अपनी ताकत दिखाने की मंशा भी थी। किताब बमबारी के भयानक असर को बताती है, लाखों मौतें, शहर तबाह और रेडिएशन का सालों तक चलने वाला असर। ये घटनाएं सिर्फ एक जंग का अंत नहीं थी, एक नए, कहीं ज्यादा खतरनाक युग की शुरुआत थी। इसने हमेशा के लिए युद्ध को बदल दिया।
और इसके बाद दुनिया दो हिस्सों में बट गई, अमेरिका और सोवियत यूनियन, कोल्ड वॉर और वो हथियारों की दौड़।
बिल्कुल, किताब का अगला बड़ा हिस्सा इसी शीत युद्ध की हथियारों की दौड़ यानी कोल्ड वॉर आर्म्स रेस पर है। दोनों सुपर पावर्स एक दूसरे से ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा संख्या में न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में जुट गईं। पहले फिशन बम, फिर उनसे कई गुना ज्यादा ताकतवर हाइड्रोजन बम, जिन्हें सुपर कहा गया।
और फिर उन्हें दुश्मन तक पहुंचाने के तरीके भी तो बने होंगे, मिसाइलें वगैरह।
हाँ, यहीं पर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें यानी ICBMs आईं, जो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे तक मार कर सकती थीं। फिर सबमरीन से लॉन्च होने वाली मिसाइलें SLBMs, जिन्हें छुपाना और ट्रैक करना बहुत मुश्किल था।
अच्छा,
और फिर आई MIRV टेक्नोलॉजी यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स।
ये क्या चीज थी?
मतलब एक ही मिसाइल पर कई न्यूक्लियर वॉरहेड लगे होते थे जो अलग अलग टारगेट पर गिर सकते थे। इसने तो आर्म्स रेस को और भी खतरनाक बना दिया, क्योंकि अब डिफेंस करना लगभग नामुमकिन हो गया था।
बाप रे, ये सुनने में ही इतना डरावना है। इतनी तबाही वाले हथियारों के साथ दुनिया जी कैसे रही थी? मतलब कोई स्ट्रेटजी, कोई सिद्धांत था इनके इस्तेमाल को लेकर?
हाँ, और ये किताब का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, न्यूक्लियर स्ट्रेटजी और डॉक्ट्रिन। यहाँ वॉल्वर्टन कुछ मुश्किल लेकिन जरूरी आइडिया समझाते हैं। सबसे मेन है निवारण या डिटरेंस का सिद्धांत।
डिटरेंस?
हाँ, इसका बेसिक आइडिया ये है कि अगर दोनों साइड्स के पास इतने न्यूक्लियर वेपन्स हों कि वो एक दूसरे को पूरी तरह तबाह कर सकें, तो कोई भी पहले हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जवाबी हमला भी उतना ही भयानक होगा।
इसी को शायद मैड कहते हैं, म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन।
बिल्कुल सही कहा आपने, परस्पर सुनिश्चित विनाश। सुनने में भले ही पागलपन लगे, लेकिन कोल्ड वॉर के टाइम यही सोच हावी थी। मतलब ये कि न्यूक्लियर वॉर इतनी भयानक होगी कि कोई जीत नहीं सकता, इसलिए इसे शुरू ही नहीं करना चाहिए।
और भी सिद्धांत थे।
हाँ, जैसे फर्स्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी, मतलब दुश्मन के हमला करने से पहले ही उसके हथियार खत्म कर देना, या फिर फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्स यानी सिर्फ बड़े हमले के बजाय छोटे न्यूक्लियर अटैक का ऑप्शन रखना। ये सब तरीके थे इस बैलेंस ऑफ टेरर यानी आतंक के संतुलन को बनाए रखने के।
लेकिन ये टेक्नोलॉजी सिर्फ दो सुपर पावर्स तक तो रुकी नहीं, ये फैली भी।
हाँ, यहीं पर प्रोलिफरेशन और नए न्यूक्लियर स्टेट्स का चैप्टर आता है। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी धीरे धीरे अमेरिका और सोवियत यूनियन से निकलकर यूके, फ्रांस, चीन तक पहुंची। फिर बाद में भारत, पाकिस्तान, इसराइल और नॉर्थ कोरिया जैसे देश भी न्यूक्लियर पावर बने। वॉल्वर्टन बताते हैं कि क्यों फैली नेशनल सिक्योरिटी की चिंता, रीजनल दुश्मनी, प्रेस्टीज का सवाल,
और इसे रोकने की कोशिशें भी हुई होंगी।
हाँ बिल्कुल, जैसे कि परमाणु अप्रसार संधि यानी NPT।
NPT का क्या मकसद था?
NPT जो 1970 में लागू हुई, उसका मेन टारगेट था न्यूक्लियर वेपन्स को और देशों तक फैलने से रोकना। जिन देशों के पास ये पहले से थे, P5 कहते हैं उन्हें, अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस, चीन, उनसे कहा गया कि वो धीरे धीरे निरस्त्रीकरण की तरफ बढ़ें, और बाकी देशों से कहा गया कि वो ये हथियार ना बनाएं।
लेकिन ये पूरी तरह कामयाब नहीं हुई, है ना?
नहीं, जैसा कि हम जानते हैं, कुछ देशों ने संधि साइन नहीं की, कुछ ने की और फिर भी हथियार बनाए, लेकिन इसने प्रसार को धीमा जरूर किया।
इतनी खतरनाक टेक्नोलॉजी के साथ क्या कभी कोई बड़ी दुर्घटना या गलती का खतरा नहीं हुआ? मतलब कोई एक्सीडेंट
हुआ, और ये किताब का शायद सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाला हिस्सा है, न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स एंड नियर मिसेस। वुल्वर्टन ऐसी कई घटनाओं का जिक्र करते हैं जब दुनिया टेक्नोलॉजी फेल होने, कंप्यूटर एरर, इंसानी भूल या गलतफहमी की वजह से अनजाने में न्यूक्लियर वॉर के बिल्कुल कगार पर पहुंच गई थी।
बाप रे, कोई उदाहरण है इसका?
एक बहुत फेमस कहानी है 1983 की। एक सोवियत एयर डिफेंस ऑफिसर थे, स्टैनिस्लाव पेट्रोव। उनके अर्ली वार्निंग सिस्टम ने दिखाया कि अमेरिका ने कई मिसाइलें लॉन्च कर दी हैं। प्रोटोकॉल था कि उन्हें तुरंत अपने सीनियर्स को बताना था, जिसके बाद शायद जवाबी हमला होता। लेकिन पेट्रोव को लगा कि ये अलार्म झूठा है, सिस्टम में कोई गड़बड़ी है। उन्होंने अपनी सूझबूझ से इसे फॉल्स अलार्म माना और रिपोर्ट नहीं किया,
और वो सही निकले।
हाँ, बाद में पता चला कि वो बिल्कुल सही थे। वो एक सैटेलाइट का फॉल्स सिग्नल था। सोचिए, अगर उस दिन वो बंदा सिर्फ नियमों पर चलता तो क्या होता?
सच में, मतलब एक इंसान के सही फैसले ने दुनिया को बचा लिया। ये तो दिखाता है कि ये सिस्टम कितने कितने नाजुक हो सकते हैं।
बिल्कुल, ये घटनाएं याद दिलाती हैं कि शांति के समय में भी ये हथियार लगातार कितना बड़ा खतरा बने हुए हैं। इंसानी चूक, तकनीकी गड़बड़ी कभी भी हो सकती है।
तो ये तो हुई इतिहास की बात।
हाँ,
आज क्या स्थिति है? किताब आज की चुनौतियों के बारे में क्या कहती है? आजकल के खतरे क्या हैं?
किताब का आखिरी हिस्सा कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस एंड फ्यूचर थ्रेट्स पर है। आज खतरे कुछ बदल गए हैं, लेकिन कम नहीं हुए हैं। एक बड़ा डर है न्यूक्लियर कमांड और कंट्रोल सिस्टम पर साइबर अटैक का।
साइबर अटैक?
हाँ, सोचिए अगर हैकर्स न्यूक्लियर वेपन्स के लॉन्च कोड तक पहुंच जाएं या सिस्टम में ही कोई गड़बड़ी पैदा कर दें। दूसरा बड़ा खतरा है न्यूक्लियर टेररिज्म का, कि कहीं टेररिस्ट ग्रुप्स न्यूक्लियर मटीरियल हासिल न कर लें या कोई छोटा मोटा न्यूक्लियर डिवाइस न बना लें।
और नई टेक्नोलॉजी का भी असर पड़ रहा होगा, है ना, जैसे AI वगैरह।
बिल्कुल, हाइपरसोनिक मिसाइलें जो आवाज़ की रफ्तार से कई गुना तेज चलती हैं और जिन्हें रोकना बहुत मुश्किल है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का हथियारों में इस्तेमाल, ये नई चीज़ें न्यूक्लियर बैलेंस को कैसे बिगाड़ सकती हैं, इस पर भी बात है। क्या AI वाले हथियार खुद फैसले ले सकते हैं बिना इंसानी कमांड के? ये बहुत बहुत गंभीर सवाल है।
और जो पुराने प्लेयर्स हैं, जिनके पास पहले से हथियार हैं,
कई न्यूक्लियर पावर वाले देश अपने पुराने हथियारों को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, उन पर और पैसा खर्च कर रहे हैं। दूसरी तरफ इन हथियारों को पूरी तरह खत्म करने के लिए भी आंदोलन चल रहे हैं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर। और फिर नॉर्थ कोरिया और ईरान जैसे देशों के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स लगातार चिंता का कारण बने हुए हैं, और वो AQ खान जैसे लोगों के जरिए जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का अवैध व्यापार हुआ, उसने भी खतरे को बढ़ाया है।
इसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का क्या रोल है, जैसे IAEA?
अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA का काम बहुत जरूरी है। ये UN की एजेंसी है जो निगरानी रखती है कि न्यूक्लियर मटेरियल का इस्तेमाल शांति के कामों के लिए हो रहा है या नहीं, कहीं कोई देश चोरी छिपे हथियार तो नहीं बना रहा। NPT संधि और IAEA मिलकर प्रसार रोकने की कोशिश करते हैं, हालांकि उनकी अपनी लिमिटेशंस हैं।
कुछ बड़े सबक या कहूं कि मेन मैसेजेस क्या निकलते हैं?
मेरे ख्याल से पहला और सबसे बड़ा मैसेज तो वही परमाणु विरोधाभास है। ये हथियार एक ही साथ विनाश और शायद बचाव के प्रतीक हैं। ये टेंशन हमेशा बना रहता है, क्या ये हमें सुरक्षित रखते हैं या हमारे अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है? कोई आसान जवाब नहीं है इसका।
हाँ, ये वाकई एक पहेली है। और दूसरा सबक जो मुझे लगा वो ये कि तकनीक अक्सर नीति से आगे भागती है।
मतलब टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बढ़ी कि उसको कंट्रोल करने के नियम, कायदे, संधियां पीछे रह गईं।
बिल्कुल, इससे अस्थिरता बढ़ी। जैसे MIRV टेक्नोलॉजी आई, उसको कंट्रोल करने में सालों लग गए।
सही।
तीसरा अहम मुद्दा है परमाणु हथियारों की दृढ़ता, उनका टिकाऊपन। कोल्ड वार खत्म हुए 30 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन ये हथियार खत्म नहीं हुए। ये आज भी कई देशों की सिक्योरिटी पॉलिसी का सेंटर पॉइंट है। पूरी तरह निरस्त्रीकरण बहुत मुश्किल लगता है। यह हमारी दुनिया की एक सच्चाई बन चुकी है।
चौथा मुद्दा प्रसार से जुड़ा है। आपने कहा था प्रसार एक सतत प्रक्रिया है। हाँ, मतलब न्यूक्लियर वेपन बनाने का जो ज्ञान है, जो टेक्नोलॉजी है, वो अब दुनिया में मौजूद है, तो ये कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसे हम पूरी तरह सॉल्व कर दें। इसे लगातार मैनेज करना होगा, इस पर नजर रखनी होगी, ये खतरा हमेशा बना रहेगा।
और पांचवा जो मुझे बहुत सोचने पर मजबूर करता है वो है मानवीय कारक, ह्यूमन फैक्टर।
हाँ, जिसे स्टैनिस्लाव पेट्रोव की कहानी से पता चलता है। आखिरकार ये सारे कॉम्प्लेक्स सिस्टम इंसानों के हाथ में है और इंसान गलतियां करते हैं, तनाव में आते हैं, गलत फैसले ले सकते हैं। इन हथियारों के साथ ह्यूमन एरर का रिस्क हमेशा हमेशा रहेगा।
वॉल्वर्टन की किताब में यकीनन कई ऐसी बातें होंगी जो सीधे असर करती हैं। कुछ ऐसे विचार या कोट्स जो आपको खास तौर पर याद रह गए?
एक विचार जो बहुत सीधा और पावरफुल है, परमाणु हथियार पारंपरिक हथियार नहीं है, वे नरसंहार के साधन हैं। ये इस बात पर जोर देता है कि इनकी तबाही इतनी बड़ी होती है कि ये सैनिक और आम नागरिक में कोई फर्क नहीं करते, ये युद्ध के नियम ही बदल देते हैं।
हाँ, ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक और विचार है जो मुझे बहुत स्ट्राइकिंग लगा। परमाणु युग ने हम सभी को दुनिया का नागरिक बना दिया है, चाहे हम चाहें या ना चाहें। मतलब न्यूक्लियर खतरा किसी एक देश या बॉर्डर तक सीमित नहीं है, इसका असर पूरी दुनिया पर, हम सब पर पड़ता है। हम सब एक ही नाव में है, है ना?
बिल्कुल। और डिटरेंस की स्ट्रेटजी पर एक बहुत सटीक बात है, निवारण तब तक काम करता है जब तक ये विफल नहीं होता, और जब ये विफल होता है तो परिणाम अकल्पनीय होते हैं।
ओ,
ये उस पतली सी रस्सी की तरह है जिस पर दुनिया चल रही है। ये स्ट्रेटजी कामयाब रही है अब तक, लेकिन अगर ये कभी फेल हुई तो नतीजा सोच से परे होगा।
और आखिर में प्रसार की चुनौती पर ये बात, परमाणु हथियार बनाने का ज्ञान भुलाया नहीं जा सकता, जिससे प्रसार एक स्थायी चुनौती बन जाता है, ना कि हल करने योग्य समस्या।
हाँ, एक बार जिन बोतल से बाहर आ गया तो उसे वापस डालना नामुमकिन है। हमें सच्चाई के साथ जीना सीखना होगा।
तो ये सब जानने के बाद सवाल उठता है कि हम, मतलब आम लोग, इस जानकारी का क्या करें? ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से कैसे जुड़ती है?
मेरे ख्याल से सबसे पहली बात तो ये है कि ये किताब हमें दुनिया में जो कुछ चल रहा है उसे बेहतर समझने में मदद करती है।
जब हम न्यूज में नॉर्थ कोरिया, ईरान, न्यूक्लियर डील या किसी नई ट्रीटी के बारे में पढ़ते हैं, तो ये जानकारी हमें एक बेहतर पर्सपेक्टिव देती है। हम सिर्फ हेडलाइन नहीं पढ़ते, हम उसके पीछे की हिस्ट्री और कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा समझ पाते हैं।
सही कहा, ये हमें एक ज्यादा इन्फॉर्म सिटीजन बनाती है। हम नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी पर जो बहसें होती हैं उनमें शायद ज्यादा मीनिंगफुल तरीके से सोच सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं।
और शायद ये हमें ये समझने में भी मदद करती है कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन, बातचीत, हथियार कंट्रोल के जो एफर्ट्स हैं वो क्यों जरूरी हैं, भले ही वो कितने मुश्किल लगे। दुनिया के खतरों को समझना शायद हमें शांति की कीमत का एहसास कराता है, और जो लोग पॉलिसी बनाते हैं उनके लिए भी इसमें बड़े सबक हैं, है ना?
बिल्कुल। ये किताब याद दिलाती है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी पर फोकस करना काफी नहीं है। ह्यूमन फैक्टर, इतिहास के सबक और अनजाने में होने वाली गलतियों की पॉसिबिलिटी, इन सबको हमेशा ध्यान में रखना होगा। पेट्रोव की कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं, एक चेतावनी है।
हाँ, और एक और दिलचस्प बात है, परमाणु हथियारों की एक कहानी हमें आज के दूसरी पावरफुल टेक्नोलॉजीज के बारे में भी सोचने पर मजबूर करती है, जैसे AI, जेनेटिक इंजीनियरिंग, साइबर वेपन्स।
सही, कैसे हम नई चीजें बनाएं लेकिन उनकी जिम्मेदारी भी समझें, कैसे हम ये पक्का करें कि हमारी बनाई हुई चीजें हमारे ही खिलाफ ना हो जाएं, ये एक बड़ा नैतिक सवाल है जो न्यूक्लियर एज ने हमारे सामने रखा है।
इस पूरी बातचीत के बाद अगर आपसे पूछूं कि आपके लिए सबसे अहम सीख या सबसे चौंकाने वाली बात क्या रही, तो वो क्या होगी?
मेरे ये शायद ये परमाणु विरोधाभास और परमाणु युग की स्थायित्व का विचार ही सबसे गहरा है। ये एहसास कि हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जिसे इन हथियारों ने परमानेंटली बदल दिया है। हम उस पुरानी दुनिया में वापस नहीं जा सकते।
हाँ,
हमें इसी नई हकीकत के साथ जिम्मेदारी से जीना सीखना होगा। और ये सिर्फ सरकारों या सेनाओं का काम नहीं है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। ये एक तकनीकी या मिलिट्री इशू होने से कहीं ज्यादा एक मानवीय और नैतिक सवाल है।
और मेरे लिए शायद सबसे ज्यादा असरदार वो मानवीय पहलू रहा, ये जानना कि कैसे ये इतने जटिल, इतने खतरनाक सिस्टम आखिर में इंसानों पर निर्भर करते हैं। कैसे एक व्यक्ति का फैसला, जैसे स्टैनिस्लाव पेट्रोव का, पूरी दुनिया की किस्मत बदल सकता है। ये इन सिस्टम्स की ताकत के साथ साथ उनकी जो अंदरूनी कमजोरी है, जो नाजुकता है, उसको भी दिखाता है। यह हमें याद दिलाता है कि सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी भी ह्यूमन विजडम और एथिक्स से ऊपर नहीं है।
बिल्कुल, ये ज्ञान हमें शायद थोड़ा डराता है, लेकिन साथ ही ज्यादा जागरूक और जिम्मेदार ग्लोबल सिटीजन बनने की प्रेरणा भी देता है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।